فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
ترجمہ کنزل ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا اسماعیل بن علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے خواب میں ایک محدث یعنی حدیث پاک کی خدمت کرنے والے بہت بڑے عالم کو دیکھ کر دریافت کیا کہ حق تعالی نے کیا سلوک کیا. انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بخش دیا گیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا کہ جب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد ان دو انگلیوں سے درود پاک لکھا کرتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز حکایت سے معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے اور لکھنے کا بہت ہی فائدہ ہے. ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے تو اس کے ساتھ درود پاک ضرور لکھیں. صرف لکھنے پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ زبان سے بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے. بہار شریعت کی پہلی جلد کے صفحہ 534 پر ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود پاک لکھنا واجب ہے. لیکن یہاں پر ایک احتیاط پیش نظر رہے کہ جب بھی لکھیں مکمل درود پاک لکھیں. بعض لوگ سلام لکھ ڈالتے ہیں یا عین میم لکھ دیتے ہیں یا صاد لکھ دیتے ہیں. فتاوی رضویہ کی 23 جلد اور بہار شریعت کی پہلی جلد سے یہ ماخوذ ہے کہ ایسا لکھنا کہ سلام اصل درود پاک کی جگہ یا صاد یا عین میم یا عین کی کچھ علامت بنا دیتے ہیں تو یہ ناجائز اور سخت حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادبوں میں سے بنائے، با ادب با نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں. آج جس نعمت کا تذکرہ ہم اپنے اس سلسلے میں کریں گے، اس نعمت کا بیان اس حکایت میں ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا اپنے رسالے کتاب الشکر للہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت زیادہ نوازا گیا، پھر سب کچھ جاتا رہا تو وہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک कि उसके पास बिछाने के लिए एक चटाई रह गई, मगर फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सना में मसरूफ रहा। एक दूसरे मालदार शख्स ने उस चटाई वाले से कहा कि अब तुम किस बात पर रब तआला का शुक्र अदा करते हो? उसने कहा कि मैं उन नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि अगर मैं दुनिया की सारी दौलत भी दे दूं तो वो नेमतें मुझे ना मिलें। मालदार ने बड़े हैरान होकर पूछा कि वो कौन सी? जवाब दिया, क्या तुम अपनी आंख, जुबान, हाथों और पांव को नहीं देखते? यानी ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रब तआला की नेमतों का शुमार हम इंसानों के इख्तियार में नहीं है कि रब तआला की नेमतें बेशुमार हैं। 14वें पारे में इरशाद होता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार ना कर सकोगे। इस आयत के तहत हजरत सईदना इमाम खाजिन रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, यानी अल्लाह ताला ने बंदे के जिस्म में जो नेमतें दी हैं, मसलन बदन की सलामती, जिस्म की आफियत, बीनाई, अकल सलीम, समाअत, हाथ, पांव, और वो तमाम नेमतें जिनका वो दीन और दुनिया में मोहताज होता है, बंदा अगर इनमें से अदना नेमतों को शुमार करना चाहे और उनकी मारिफत पाना चाहे तो नहीं पा सकता, तो फिर वो उन तमाम नेमतों को क्यों कर गिन सकता है जो रब तआला ने सारी मखलूक के लिए पैदा फरमाई हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज आंख की नेमत के बारे में कुछ मदनी फूल, कुछ इस नेमत का तज़किरा होगा। तो आंख अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी अजीम शान नेमत हमारे जिस्म में अता की है कि हम अपनी जिंदगी के तकरीबन 80% काम इन आंखों की मदद से अंजाम देते हैं। जी हाँ, चलना हो तो आंखें मदद करती हैं, पढ़ना हो तो आंखें मदद करती हैं, ड्राइविंग करनी हो तो आंखें मदद करती हैं, रोड पार करना हो तो आंखें मदद करती हैं, किसी शख्स को पहचानना हो तो आंखें मदद करती हैं। इसी तरह सीखने में भी आंखों का बहुत बड़ा किरदार है कि इंसान जो कुछ देख कर सीखता है, सिर्फ सुनकर सीखना उससे बहुत कम वैल्यू रखता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आंख की इस नेमत का एहसास यूं भी किया जा सकता है कि आप तसव्वुर कीजिए कि हमारी आंखें नहीं हैं, हमारी बीनाई नहीं है। तो अब आप अपना उठने से लेकर सोने तक के सारे मुआमलात समझ लीजिए, तसव्वुर खाली करना है आपने, और उठने से लेकर सोने तक के मुआमलात इन आंखों की मदद के बगैर अगर अंजाम दें तो आपके महसूसात क्या होंगे? जू ही आप अपने बिस्तर से उठेंगे तो अब आप जाहिर सी बात है जूता तलाश करेंगे। इस जूते की तलाश में जो आंखें आपकी मदद करती थी उनको तो आपने फिलहाल तसव्वुर ही तसव्वुर में गोया के खत्म कर दिया कि ये हमारे पास बिनाई नहीं है। अब आप जूता तलाश कीजिए तो कभी आप यहां हाथ मारेंगे, कभी किसी जगह पांव से टटोलेंगे, और अब वो जूता तलाश कर भी लिया तो फिर सीधे और उल्टे पांव की शनाख्त ये भी टटोल टटोल कर की जाएगी। इसके बाद आपने नाश्ता करना है। अब नाश्ते में जो चीज मुहैया की गई है वो किस जगह पर रखी है, तो आप थोड़ा टटोल कर उस बर्तन या उस प्लेट में रखी हुई अगर, तो उसको टटोल टटोल कर तलाश करेंगे। अब रोटी के साथ सालन है और यहां तो ये आलम है कि आंखों वाला भी अगर खाना खाए और थोड़ी सी बेहतियाती करे तो सालन के कुछ कतरे उसके कपड़ों पर गिर जाते हैं। तो जो शख्स तसव्वुर ही तसव्वुर में नाबीना हो चुका हो, अब वो सालन के अंदर जब निवाला लगाएगा और फिर अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा तो वो सालन कहाँ कहाँ गिरा उसको अंदाजा नहीं हो पाएगा। फिर हम अगर गिर भी जाए सालन, तो दूसरों की मौजूदगी में हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि किसी को इसका पता चले, और अगर पता चल जाए और कोई निशानदेही कर दे कि देखें जनाब आपके तो सालन गिर गया, तो हम बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये नाश्ता कर लिया, अब नाश्ता करने के बाद दफ्तर जाना है या दुकान पर जाना है या आपको कहीं पर पढ़ने के लिए जाना है, तो अब आप अपने घर से निकलने के लिए घर के अंदर ही टटोल टटोल कर दरवाजा तलाश करेंगे। फिर उसका हैंडल कहाँ है, हैंडल खोलने के बाद अब दरवाजे के बाहर जब आप निकलेंगे तो हर हर कदम पर आपका दिल इस तेजी से धड़केगा, ना जाने आगे क्या हो, ना जाने आगे क्या हो। बसा औकात कोई ऐसा जानवर जैसे कुत्ता है तो ये अब रास्ते में आ जाए तो आंख वाला देख कर बच बचा कर साइड से होके निकल जाता है। अब जिसकी आंखें नहीं है अब वो उस जानवर से किस तरह बचेगा। फिर अगर रोड पार करना है या रोड पर चलना ही है, खाली फुटपाथ पर चलना है, तो आप बताइए कि आंखें होते हुए भी रोड पर चलना, कि गाड़ी बाज औकात सामने की संत से आ जाती है, फुटपाथ पे चल रहे हैं तो बसा औकात कोई ऐसा डब्बा या कोई तार बिजली के खंभे की वहां पर लगी हुई होती है कि जिससे उलझ कर गिरने का अंदेशा होता है, तो अब उससे वो कैसे बचेगा। इसी तरह से चलते चलते आप तसव्वुर कर लीजिए कि अब आपने पढ़ना है तो अब आप सिर्फ सुनने पर इक्तिफा कर रहे हैं, अब देख कर किताब और पढ़ाने वाले की आवाज सुनकर सबक समझ में आ जाए, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब एक जरिया आप हटा चुके साइड पर कि मुझे गोया के देखने की सलाहियत मेरे में नहीं है, तो अब आप किताब को सामने रख नहीं सकेंगे, सिर्फ सुनने पर आपको इक्तिफा करना होगा। तो अब आपके सीखने का अमल अपने दीगर रुफकाए दर्जा जो आपके साथ हम जमात आपके पढ़ते हैं उनकी बनिस्बत बहुत कम हो जाएगा। फिर वापसी का अमल यूं ही कर लीजिए, तो अब वापस आने में भी सारी वो आजमाइशी, फिर घर पहुंच कर अब आपको खाना खाना है या खाना खाने के बाद आपको कपड़े तब्दील करने हैं, तो जो भी मामलात होंगे फिर उसमें जो आजमाइशें होंगी ये तो वो हैं कि जो मसरूफियात में हैं। तो जिस इस्लामी भाई के छोटे छोटे मदनी मुन्ने और मुन्निया हों, अब आप बताइए कि जब उसके मदनी मुन्ने या मुन्नी की आवाज आएगी कि अबू बाबा, तो फौरन मुतवज्जे होता है इंसान, और फिर जब अपनी औलाद का चेहरा देखता है तो दिल के अंदर एक फरहत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये आंखों के जरिए होता है इस्लामी भाइयों, अब ये जरिया तो वो खत्म कर चुका गोया के, तो अब इस खुशी का एहसास हसरत में शायद तब्दील हो जाए कि जब वो तोतली सी आवाज अपनी छोटी मदनी मुन्नी या मुन्ने की सुनेगा तो उसके दिल में हसरत आएगी कि ये प्यारी प्यारी आवाज जो मैं सुन रहा हूं, ऐ काश मुझे अपनी औलाद का प्यारा प्यारा चेहरा देखना भी नसीब हो जाता। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरह वालिदैन जिसके हयात हों उनकी आवाज जब कानों में आती है कि बेटा, या नाम लेकर पुकारते हैं कि ऐ उमर, तो जवाबन लब्बैक कहते हैं, या फिर उर्दू में जिस तरह से जी कहा जाता है। तो अब आवाज तो आ रही है वालिदैन की लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा, تو کتنی حسرت ہوگی اس بیٹے کو کہ جو اپنی والدہ یا والد کی آواز تو سن رہا ہے لیکن ان کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا. اسی طرح اگر کسی قریبی عزیز مثلا بیٹے یا بیٹی یا والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے, بھائی کا انتقال ہو جائے, بہن کا انتقال ہو جائے, تو ایک نفسیاتی تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی میں دیکھ لوں آخری مرتبہ, کہ یہ چہرہ اب دنیا میں دکھائی نہیں دے گا, قبر کی منو مٹی تلے دفن ہو جائے گا. اب جس کی آنکھیں ہیں وہ تو یہ دیکھ لیتا ہے, جو نابینا ہوتا ہے جس کی بینائی نہیں ہے, اب اس وقت وہ کس طرح اس کا دل خون کے آنسو روتا ہوگا کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں اپنے اس عزیز کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا زیارت کر لیتا. اسی طرح آپ خود غور کرتے چلے جائیں, اپنے اپنے معمولات, ہر انسان کے معمولات مختلف ہوتے ہیں, تو یہ صرف ذہن میں اگر تصور بٹھا لیں کہ اگر ہماری بینائی نہ ہو تو ہم اپنے اٹھنے سے لے کر سونے تک کے معاملات کس طرح ادا کریں گے, اور اس کے بعد گویا کہ آنکھیں کھول دیجیے اور دیکھیے کہ آپ کو ارد گرد سب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی اگر ہم سمجھیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بہت ہی پیارے انداز میں اس نعمت کا تصور کروایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طبقہ میں کچھ خاص صفتیں رکھی ہیں اور اس کی مخصوص شکل بنائی ہے. اس طبقہ میں سے اگر ایک بھی طبقہ بیکار ہو جائے تو وہ آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ آنکھوں کے اطراف پر پلکوں پر نظر کیجئے کہ جو آنکھ جیسی نازک چیز کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہیں. ان پلکوں میں رب تعالی نے کیسی تیز حرکت کی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ریت یا خاک کا کوئی ذرہ آنکھ کی طرف آتا ہوا دکھائی دے یا کوئی مچھر وغیرہ آنکھ کی طرف آتا ہوا دکھائی دے تو یہ پلکیں فوراً بند ہو جاتی ہیں اور وہ مچھر یا ذرہ وہ آنکھ کے اندر داخل نہیں ہونے پاتا, اور پھر جو گرد و غبار اڑتا ہے اس سے بھی ان آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہیں. تو یہ گویا کے دو دروازے ہیں جو از خود کام کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے یہ کھل جاتے ہیں, جب ضرورت ہوتی ہے یہ بند ہو جاتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ جب ہم سوتے ہیں تو سونے میں یہ پلکیں بند ہو جاتی ہیں, اگر یہ پلکیں بند نہ ہوں تو سونے میں وہ لطف نہیں آئے گا بلکہ عجیب سا لگے گا. میری بات بھی آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی کہ سوئے گا جب کوئی شخص تو اس کی آنکھیں تو بند ہوں گی, پلکیں تو بند ہوں گی, بالفرض اگر نہیں بند ہوتی تو آپ بتائیے عجیب لگے گا یا نہیں لگے گا. تو یہ رب تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے. پھر آنکھوں کی حفاظت کے لیے ایک اور چیز پر اگر ہم غور کریں نا کہ اس کے جو کنارے ہیں یہ قدرے خمدار رکھے گئے ہیں, وہ اس طرح کے جو آنسو یا پانی وغیرہ نکلے تو وہ یہاں سے یا اس جگہ سے نکل آئے. اور پھر آنکھوں کا جو یہ پانی ہوتا ہے یہ آنکھوں کے اندرونی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے. اسی طرح یہ دونوں جو بھویں ہوتی ہیں جس کو ابرو بھی کہتے ہیں یہ بھی آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں, اور اس ان چیزوں سے پلکوں سے بھی اور ابرو سے آنکھ کی زینت بھی حاصل ہوتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ تھوڑا سا تصور ہم نے اس نعمت کا کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ہمیں احساس ہو جائے کہ رب تعالیٰ نے خود ہمارے جسم میں کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ بعض نعمتیں جوڑے کی شکل میں ہیں, کان دو ہیں, آنکھ دو ہیں, और हाथ दो हैं, पांव दो हैं, फिर हाथों में उंगलियां पांच हैं, तो हर चीज की हिकमत है। तो आंखें दो, जाहिर है कि एक से दो, दो से चार मुहावरा है कि ये अच्छा होता है। अब एक आंख जब हो तो वो फिर इधर का हिस्सा देख पाएगी, इधर का हिस्सा देखने में फिर हमें गर्दन थोड़ी सी घुमाना पड़ेगी। तो अल्लाह ताला की नेमतों पर जितना भी शुक्र किया जाए कम है। तो मदनी फूलों के हवाले से, सबसे पहले वो मदनी फूल जो इस नेमत की हिफाजत के लिए हैं, वो पेश करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो ये कि इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन जौजी अलैहि रहमतुल्लाह कवि फरमाते हैं कि शुक्र अदा ना करने वालों का इलाज ये है कि ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जब नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जाता तो वो जाइल हो जाती है। और हजरत सैयदना फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते थे कि नेमतों पर शुक्र करना लाजिम कर लो, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी कौम से नेमत छिन जाने के बाद उन्हें दोबारा मिल जाए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस नेमत की हिफाजत का एक जरिया ये भी है कि हम सुरमा इस्तेमाल करें। जी हां, सुरमा ये भी आंखों की हिफाजत में बहुत मदद देता है। चुनांचे चार मदनी फूल पेश करता हूं, अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में इनको सजा लीजिए। सुनन इब्ने माजा की रवायत में है कि तमाम सुरमों में से बेहतर सुरमा इस मिद है कि ये निगाह को रोशन करता है और पलकों को उगाता है। पत्थर का सुरमा इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं, और सियाह सुरमा या काजल बकसद जीनत यानी जीनत की नियत से मर्द को लगाना मकरूह है, और जीनत मकसूद ना हो तो कराहत नहीं। यहां पर एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत प्यारा अंदाज मुझे याद आया कि वो शब बेदारी फरमाया करते थे। अब रात भर जब फिक्रों की इबादत में मशगूल रहने के बाद दिन में लोगों के सामने जाना होता तो उससे पहले आप आंखों में सुरमा लगा लिया करते ताकि मुझे देखकर या मेरी आंखें देखकर किसी को ये अंदाजा ही ना होने पाए कि मैं रात भर जागकर इबादत करके आया हूं। तो यहां पर वो जीनत की नीयत नहीं थी, बल्कि ये नीयत थी कि लोगों को मैं तरोताजा महसूस हूं और किसी को पता ना चले कि रात को मैं इबादत में मसरूफ रहा हूं। बहरहाल, अगर मर्द जीनत की नीयत से लगाएगा तो अब मकरूह है, अगर जीनत की नीयत ना हो तो फिर मकरूह नहीं। सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। अब ये कि इसके लगाने का तरीका, तो लगाने के कई तरीके मनकूल हैं, उनका खुलासा अर्ज किया देता हूं कि दोनों आंखों में तीन तीन सिलाइयां ये लगा लीजिए, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि कभी सीधी आंख में तीन बार और बाई में दो बार ये लगा लीजिए, तो कभी दोनों आंखों में दो दो और फिर एक सिलाई को सुरमे वाली करके उसी को बारी बारी दोनों आंखों में लगा लीजिए। एक तरीके में दोनों में तीन तीन, और एक तरीके में सीधी आंख में तीन और उल्टी आंख में दो, और तीसरे तरीके में दोनों आंखों में दो दो सिलाइयां लगाने के बाद तीसरी सिलाई को सुरमे वाली करके बारी बारी दोनों आंखों में लगा लीजिए। तो ये तीन तरीके मनकूल हैं सुरमा लगाने के। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शरीयत ने किस कदर हमारी सेहत का भी ख्याल रखा है, आपको इन मदनी फूलों से भी अंदाजा हो गया होगा कि सुन्नतों में एक हिकमत ये भी है कि जब इस पर हम अमल करेंगे तो जहां सुन्नत का सवाब मिलता है वहीं पर हमारी सेहत की भी हिफाजत होती है। तो अल्लाह ताला हमें सुरमे के इस्तेमाल के शरई उसूलों को मद्देनजर रखने की तौफीक अता फरमाए। आजकल आंखों के अमराज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आंखों में जलन होना, आंखों से पानी बहते रहना, या आंखों में कीचड़ जमा हो जाना, या सर दर्द होना, या कंधों के दर्द में मुब्तला हो जाना, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गान दीन इस आंख की नेमत का एहसास किस तरह रखा करते थे और किस तरह अपने पास आने वालों को दिलाया करते थे, इस ईमान अफरोज हिकायत से अंदाजा कीजिए कि हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक शख्स हजरत सैयदना यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपनी तंगदस्ती की शिकायत करने लगा। तो आपने उससे पूछा कि जिस आंख से तुम देख रहे हो क्या इसके बदले 1,00,000 दिरहम तुम्हें कबूल हैं? उसने अर्ज किया कि नहीं। फरमाया तेरे एक हाथ के इवज 1,00,000 दिरहम? उसने कहा कि नहीं। फिर फरमाया तो क्या पांव के बदले में? तो उसने जवाब दिया कि नहीं। रावी बयान करते हैं कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको मुख्तलिफ नेमतें याद दिलाने के बाद फरमाया कि मैं तो तुम्हारे पास लाखों का माल देख रहा हूं और तुम मोहताजी और तंगदस्ती की मुझसे शिकायत करने आ गए हो। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, हजरत सैयदना इमाम जाफर रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते, मिरकात शरीफ में ये रवायत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आंख में खारी पानी रखा है ताकि आंख की चर्बी, ये जो डेला में नजर आता ना अंदर से और ब्लैक बॉल होता है छोटा सा, तो ये आंख की चर्बी होती है। तो फरमाते हैं खारी पानी आंख में रखा है ताकि ये आंख की चर्बी महफूज रहे और पिघल ना जाए, और कान के पर्दे में कड़वापन रखा है ताकि कोई कीड़ा इस रास्ते से दिमाग में दाखिल ना हो जाए, और नाक के नथनों में गर्मी रखी है ताकि हवा साफ होकर दिमाग तक पहुंचे। तो रब तआला ने कैसी कैसी नेमतें अता की हैं, फिर भी हम उसकी नाफरमानी का सोचते हुए, नाफरमानी का काम करते हुए हम हया नहीं करते। ऐ काश हम अपने रब अज़्ज़ वजल की नाफरमानी से इसलिए भी बचें कि उसने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करने की कोशिश का जज्बा अता फरमाए, और नेमतों की कदर करते हुए शुक्र करने की आदत बनाने की तौफीक अता फरमाए, और इन नेमतों के जवाब में फरमाबरदारी वाले कामों में लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
ترجمہ کنزل ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟